नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत फिनलैंड के रिश्ते एक महत्वपूर्ण दौर में। दोनों देश डिजिटलीकरण और टिकाऊपन के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अमरीका ने शांति समझौता टूटने के बाद ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। अमरीका ने देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए नए वीजा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एकदिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वे हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली देश की पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहेब और श्री अनंतपुर साहेब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरियां नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अंबाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए और महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेता द्विपक्षीय संबंधों को डिजिटलीकरण और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक रिपोर्ट।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने फिनलैंड के आर्थिक मामलों के मंत्री सकारी पुइस्टो के साथ भारत फिनलैंड बिजनेस राउंड टेबल को संबोधित करते हुए व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत बनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के पूरा होने से दोनों देशों के कारोबार और निवेश के लिए नए अवसर खुलेंगे। श्री गोयल ने कहा कि भारत की विशाल प्रतिभा, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और मजबूत विनिर्माण क्षमता फिनलैंड की तकनीकी विशेषज्ञता और विश्व स्तरीय नवाचार प्रणाली की पूरक है। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापक सहयोग की मजबूत नींव तैयार होती है। श्री गोयल ने दोनों देशों के उद्योग जगत से उन्नत विनिर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये सहयोग दोनों देशों के उद्योगों और नागरिकों के लिए साझा समृद्धि तथा सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। विश्व दर्पण के लिए मैं मुकेश कुमार बल।
विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका ने देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए नए वीजा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जो विदेशी ऐसे आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देते हैं वो अमरीकी सभ्यता के विरोधी हैं और वो अमरीका में प्रवेश नहीं कर सकते। अमरीकी प्रशासन का कहना है कि ये नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों से लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका ने कल रात ईरान पर फिर से हमले किए। दोनों देशों के बीच शांति समझौता टूटने के बाद ईरान पर अमेरिका का ये लगातार छठा हमला है। अमेरिकी केंद्रीय कमान के अनुसार इस हमले का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कमजोर करना है, क्योंकि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले अमरीकी वाणिज्यिक जहाजों के लिए संकट पैदा करता है। उधर ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि ईरान पर अमरीकी हमलों में नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाए जाने के बाद 3 लोग मारे गए हैं और कई अन्य घायल हुए हैं। ईरान के होर्मुज प्रांत में कई स्थानों पर हमले हुए और कोहरिस्तान गांव के पास 2 पुलों और बंदर खमीर काउंटी में शोर नदी को भी निशाना बनाया गया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। एक रिपोर्ट।
ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन में लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की स्थिति पर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने तख्तियां लेकर पाकिस्तान के विरुद्ध नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि किस्तानी सुरक्षा बलों ने क्षेत्र में मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। उनका कहना है कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी तथा आम नागरिकों, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान की यात्रा और पर्यटन के बहिष्कार की भी अपील की है। उन्होंने लोगों से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की सेवाओं का उपयोग नहीं करने तथा उनकी मांगें पूरी होने तक पाकिस्तान भेजे जाने वाले धन पर रोक लगाने का भी आह्वान किया है। विश्व दर्पण समाचार के लिए शक्ति सिंह।
अल्जीरिया की राजधानी के पास एक अनाथालय में लगी आग में 11 बच्चों की मौत हो गई और 19 अन्य घायल हो गए। अल्जीरिया की नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि राजधानी अल्जीयर्स के पूर्वी उपनगर मोहम्मदिया में स्थित 2 मंजिला शिशु देखभाल संस्थान में कल आग लग गई। यूक्रेन की संसद ने एक बड़े सरकारी फेरबदल में सरही कुर्स्की को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कुर्स्की को प्रधानमंत्री पद के लिए नामित किया। कुर्स्की मई 2025 से यूक्रेन की राष्ट्रीय तेल और गैस कंपनी नाफ्टोगास के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। ऊर्जा क्षेत्र में उनके अनुभव को देखते हुए कुर्स्की को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है। इसका उद्देश्य न्याय का समर्थन करना, पीड़ितों के अधिकारों को बढ़ावा देना और विश्व की शांति, सुरक्षा तथा कल्याण को संकट में डालने वाले अपराधों को रोकने में इच्छुक लोगों को एकजुट करना है। ये दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि को अपनाने की वर्षगांठ का प्रतीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप का फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यूजर्सी स्टेडियम उपस्थित रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क के ट्रंप टावर में फीफा के स्वागत समारोह में भी भाग लेंगे। भारत की महिला फुटबॉल टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। पिछली बार भारतीय टीम ने पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में जगह बनाई थी। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। वहीं 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत फिनलैंड के रिश्ते एक महत्वपूर्ण दौर में। दोनों देश डिजिटलीकरण और टिकाऊपन के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिका ने शांति समझौता टूटने के बाद ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। अमेरिका ने देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए नए वीजा प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।